एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प उपन्यास पर बात करने वाले हैं, जॉन फाउल्स का 1969 में प्रकाशित द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वूमेन।
हाँ, ये एक बहुत ही अनूठी किताब है। फाउल्स मतलब पोस्ट वॉर ब्रिटिश लेखकों में उनकी एक अलग ही जगह है।
बिल्कुल, और उनके काम में ना वो अस्तित्ववाद जैसे सार्थ्र वगैरह का असर साफ दिखता है, मतलब जीवन का अर्थ, व्यक्तिगत चुनाव, ये सब।
सही कहा, और ये उपन्यास खास इसलिए भी है क्योंकि ये हमें ले तो जाता है विक्टोरियन इंग्लैंड में 19वीं सदी में।
हाँ, एकदम उस दौर में।
लेकिन इसके सवाल बिल्कुल आज के हैं। क्या हम समाज के नियमों में ही बंधे रहेंगे या अपनी पहचान, अपना रास्ता खुद बना सकते हैं?
और फाउस जिस तरह कहानी कहते हैं वो भी पारंपरिक नहीं है, वो तो कहानी कहने के तरीकों पर ही सवाल उठाते हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे।
हाँ जरूर।
तो आज का हमारा इरादा है कि इस उपन्यास की पूरी कहानी को समझें, किरदारों के सफर को देखें और जो वो बड़े सवाले उठाता है उन पर गौर करें।
चलिए शुरू करते हैं। तो कहानियां में ले जाती है साल 1867 में। जगह है लाइम रिजेस, इंग्लैंड का एक तटीय शहर।
अच्छा, कोस्टल टाउन।
हाँ, और वो दौर ऐसा था जब समाज के नियम बहुत सख्त हुआ करते थे, खासकर महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा। हमारे मुख्य किरदारों में से एक हैं चार्ल्स स्मिथसन, एक कह सकते हैं जेंटलमैन, शौकिया तौर पर जीवाश्म मतलब फॉसिल्स इकट्ठे करते हैं।
अच्छा, पेलियंटोलॉजी में रुचि।
हाँ, कुछ वैसा ही। और उनकी जिंदगी एकदम तयशुदा रास्ते पर चल रही है। उनकी सगाई हो चुकी है अर्नेस्टीना फ्रीमन से, अमीर लड़की है, पारंपरिक सोच वाली।
तो सब कुछ सेट है एक तरह से।
बिल्कुल व्यवस्थित, जिसका अंत पता हो। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है। चार्ल्स अपनी मंगेतर अर्नेस्टीना के साथ शहर की मशहूर समुद्री दीवार द कॉब पर टहल रहा होता है।
हाँ, द कॉब।
और तभी उसकी नजर एक अकेली औरत पर पड़ती है, बिल्कुल अकेली, जो बस समंदर को घूर रही है। तूफानी सा मौसम है।
रहस्यमयी एंट्री।
हाँ, और बस वो एक झलक चार्ल्स के सदी बंधाई पूर्वानुमानित दुनिया में एक हलचल सी मचा देती है।
और यहीं से उपन्यास का जो मुख्य संघर्ष है वो शुरू होता है ना?
बिल्कुल।
ये जो अकेली महिला है, ये है सारा वुड्रफ। पढ़ी लिखी है, गवर्नेस का काम करती थी, लेकिन समाज ने उसे जैसे बाहर निकाल दिया है।
हाँ, उसके बारे में तरह तरह की बातें उड़ती हैं। अफवाहें हैं कि किसी फ्रांसीसी नौसेना के अफसर ने उसे धोखा दिया और छोड़ दिया।
इसीलिए लोग उसे अजीब नामों से बुलाते हैं, ट्रेजेडी या फिर फ्रेंच लेफ्टिनेंट की रखेल।
बहुत दुखद।
तो सारा की ये जो मौजूदगी है, ये चार्ल्स के सुरक्षित तयशुदा जीवन के लिए एक सीधी चुनौती है। वो सिर्फ एक औरत नहीं है, वो एक संभावना है, एक अनिश्चित, शायद ज्यादा ज्यादा असल जिंदगी की।
हाँ, मतलब एक खिड़की जैसी जो किसी और दुनिया में खुलती हो।
सही कहा। और चार्ल्स के सामने ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि वो समाज, अपनी मंगेतर, अपनी जिम्मेदारियों के रास्ते पर चले या फिर इस रहस्यमय खिंचाव के पीछे जाए, ये जानने के लिए कि आखिर है क्या वहाँ।
और यही फाउस्ट मतलब विक्टोरियन कपड़ों में आधुनिक इंसान के उस द्वंद को दिखाते हैं।
बिल्कुल, वो चुनाव तयशुदा रास्ते और अपनी मर्जी के बीच का।
तो चार्ल्स खुद को रोक नहीं पाता। उसकी जिज्ञासा उसे खींचती है और वो साला से छुप छुप के मिलने लगता है।
कहाँ मिलते हैं ये लोग?
उनकी मुलाकातें होती हैं एक जगह है अंडरक्लिफ। ये शहर की नजरों से दूर एक तरह का जंगली उबड़ खाबड़ इलाका है, जैसे समाज के नियमों से बाहर की कोई जगह।
अच्छा, सिंबॉलिक है ये भी।
हाँ, और इन्हीं मुलाकातों में सारा धीरे धीरे अपनी कहानी बताती हैं, या शायद कहानी का वो वर्जन जो वो चार्ल्स को सुनाना चाहती है।
ये जरूरी नुक्ता है।
वो चार्ल्स को जीवाश्म देती है, फॉसिल्स, जो शायद दबे हुए अतीत का प्रतीक हैं या बदलाव की ताकतों का। वो अपने गुनाह की बात करती है, खुद को एक दुखियारी मजबूर औरत की तरह पेश करती है।
और चार्ल्स
जाहिर है उसकी कहानी से प्रभावित होता है, उसे दया आती है और धीरे धीरे एक आकर्षण भी महसूस होने लगता है। अब उसे अर्नेस्टीना के साथ अपना भविष्य, वो एक सोने के पिंजरे जैसा लगने लगता है, खूबसूरत पर बेजान।
और यहीं पर सारा वुड्रफ का किरदार इतना दिलचस्प हो जाता है ना, वो सिर्फ एक बेचारी दुखियारी औरत नहीं।
बिल्कुल नहीं, फाउल्स ने उसे शायद इस उपन्यास का सबसे मॉडर्न किरदार बनाया है।
हाँ, बाहर से वो समाज की बनाई हुई गिरी हुई औरत की छवि में दिखती है, लेकिन अंदर से
वो बहुत बुद्धिमान है, आत्मजागरूक है, और ऐसा लगता है जैसे वो अपनी कहानी की लगाम अपने हाथ में रखे हुए हैं।
यही वो प्रोटो फेमिनिस्ट वाली बात आती है ना, मतलब उस जमाने के हिसाब से देखें तो उसकी सोच काफी आगे की है।
सही, वो उस वक्त में औरतों के लिए जो तयशुदा भूमिकाएं थी, पत्नी बनो, माँ बनो या फिर बस एक असहाय महिला बनकर रहो, उनको जैसे नकार रही है।
उसका मकसद शायद प्यार पाना या शादी करना है ही नहीं।
लगता तो यही है, उसका मकसद है स्वतंत्रता, अपनी पहचान खुद बनाना। वो चार्ल्स को और पढ़ने वाले को भी ये सोचने पर मजबूर करती है कि वो कोई वस्तु नहीं है जिसे बचाने की जरूरत है, वो खुद एक कर्ता है, अपनी इच्छा शक्ति रखने वाली।
ये उस अस्तित्ववादी विचार से जुड़ता है ना कि अस्तित्व सार से पहले आता है, मतलब हम क्या हैं ये पहले से तय नहीं, हम अपने कामों से बनते हैं।
बिल्कुल, सारा यही कर रही है। वो समाज के दिए लेबल को मानने के बजाय अपनी पहचान गढ़ रही है।
फिर कहानी में एक मोड़ आता है।
हाँ, कहानी तेजी से बदलती है जब सारा को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसे लाइम रेजिस छोड़ना पड़ता है।
ओह,
तो वो एकदम हताशा में चार्ल्स से एक आखिरी बार मिलने की गुजारिश करती है।
और इस मुलाकात का असर चार्ल्स पर क्या होता है?
बहुत गहरा, वो पूरी तरह उलझ चुका है और वो एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं जल्दबाजी में, एक कदम उठा लेता है। वो अर्नेस्टीना से अपनी सगाई तोड़ देता है।
बाप रे, उस जमाने में तो ये सामाजिक आत्महत्या जैसा रहा होगा।
बिल्कुल, उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए एक शर्मनाक दस्तावेज पर साइन भी करने पड़ते हैं, उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती है।
और ये सब एक ऐसी औरत के लिए जिसे वो ठीक से जानता भी नहीं।
हाँ, उसने अपना भविष्य, अपनी पहचान सब दांव पर लगा दिया है।
चार्ल्स का ये फैसला ये दिखाता है कि वो कैसे धीरे धीरे उन विक्टोरियन बंधनों से बाहर आ रहा है, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी है।
हाँ, कीमत तो बहुत भारी है, उसने सुरक्षा छोड़कर अनिश्चितता को चुना है।
और इस सब में अर्नेस्टीना का क्या? वो जो उस दौर की आदर्श महिला का प्रतीक थी, सुंदर, सुशील, पारंपरिक,
वो जैसे पीछे छूट जाती है। वो उस अतीत का चेहरा बन जाती है जिसे चार्ल्स लांघ रहा है। वो चार्ल्स की आज़ादी की तलाश में चुकाई गई कीमत है। ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं है, ये पुराने और नए के बीच का टकराव है।
तो सगाई तोड़ने के बाद क्या होता है?
इसके बाद चार्ल्स एक्सिटर शहर में सारा से मिलता है और वहां उनके रिश्ते में एक फिजिकल इंटीमेसी आती है।
अच्छा,
चार्ल्स के लिए तो ये जैसे उसकी तलाश का अंत है, मंजिल है।
लेकिन
अगली ही सुबह सारा गायब हो जाती है, सिर्फ एक नोट छोड़कर।
क्या मतलब, फिर से धोखा?
चार्ल्स के नजरिए से तो यही है, वो पूरी तरह टूट जाता है। जिसके लिए सब छोड़ा वही छोड़ गई। अब वो एकदम अकेला है, समाज से कटा हुआ, बिना किसी दिशा के। एक जबरदस्त झटका है ये उसके लिए।
लेकिन ये भी कितना दिलचस्प है कि सारा का गायब होना, अगर उसके नजरिए से देखें तो शायद उसकी आजादी की योजना का ही हिस्सा था।
हाँ, ये भी हो सकता है उसके लिए ये जरूरी कदम हो,
पर चार्ल्स के लिए,
उसके लिए ये एक तरह की असली शिक्षा की शुरुआत है।
अब उसे बिना किसी सहारे के, बिना समाज की दी हुई पहचान के अपना रास्ता ढूंढना है।
सही, वो अब सिर्फ एक विक्टोरियन जेंटलमैन नहीं है, उसे अब अस्तित्व के उन सवालों का सामना करना है जिनके बने बनाए जवाब नहीं होते। उसकी असल यात्रा तो अब शुरू होती है, आत्मखोज की।
तो इसके बाद क्या होता है, चार्ल्स का क्या बनता है?
कहानी फिर 2 साल आगे छलांग लगाती है।
2 साल?
हाँ, इन 2 सालों में चार्ल्स यूरोप और अमेरिका में भटकता रहा है, सारा को ढूंढता रहा है। वो काफी बदल गया है, दुनिया से थोड़ा उबा हुआ, ज्यादा संजीदा। आखिरकार उसे खबर मिलती है कि सारा लंदन में मिली है। वो उसे ढूंढने जाता है और उसे पाता है मशहूर चित्रकार दांते गैब्रियल रॉसेटी के घर में।
रॉसेटी, प्री रैफेलाइट पेंटर?
हाँ, वही, उनके बोहेमियन माहौल में। लेकिन सारा वहां एक गिरी हुई बेसहारा औरत की तरह नहीं है।
तो फिर
वो वहां एक कलाकार की सहायक के तौर पर काम कर रही है, एक स्वतंत्र महिला के रूप में।
वाह, ये तो काफी अलग है।
और यही उपन्यास अपने सबसे अनोखे, सबसे चर्चित मोड़ पर आता है। एक अंत नहीं, बल्कि कई अंत।
हाँ, मल्टीपल एंडिंग्स, ये फाउल्स का मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। यही वो कहानी कहने के सारे नियम तोड़ देते हैं।
बिल्कुल, कथावाचक जो हमें बार बार बताता है कि वो 20वीं सदी का लेखक है, वो अचानक कहानी रोक देता है।
हाँ, और सीधे पाठक से बात करने लगता है।
हाँ, वो किरदारों के मन की बातें आज के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से समझाने लगता है। यहाँ तक कि कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि आगे क्या होना चाहिए, वो कहता है किरदारों की अपनी मर्जी है।
इसी को मेटाफिक्शन कहते हैं ना, कहानी जो खुद अपने कहानी होने पर बात करे।
सही,
और ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, ये उपन्यास की थीम से जुड़ा है, चुनाव की आजादी और ये कि सच्चाई का कोई एक वर्जन नहीं होता।
तो पहला अंत क्या है?
पहला अंत जो वो दिखाता है, उसमें चार्ल्स को पता चलता है कि उसका और सारा का एक बच्चा भी है।
ओ, अच्छा।
वो मिलते हैं, पुरानी बातें भूलकर सुलह कर लेते हैं और एक परिवार की तरह भविष्य का सामना करने का फैसला करते हैं। एक तरह से हैप्पी एंडिंग,
टिपिकल विक्टोरियन नॉवल वाला अंत। हाँ, बिल्कुल वैसा। लेकिन कथावाचक तुरंत से खारिज कर देता है। कहता है ये तो बस एक ख्वाब हो सकता है, एक आसान रास्ता।
और फिर
वो जैसे टाइम को रिवाइंड करता है, कहता है चलो सिक्का उछालते हैं, तय करते हैं कि कौन सा अंत दिखाएं।
कमाल है।
हाँ, और दूसरे अंत में जब चार्ल्स और सारा दोबारा मिलते हैं तो मंजर बिल्कुल अलग है। सारा उसे कड़वी सच्चाई बताती है।
क्या सच्चाई?
वो कहती है कि उसने कभी उस फ्रेंच लेफ्टिनेंट से प्यार नहीं किया था, वो पूरी कहानी उसने गढ़ी थी।
क्यों?
ताकि वो समाज की बनाई उस जिंदगी से, उस गवर्नेंस वाले भविष्य से बच सके। उसने चार्ल्स का इस्तेमाल किया था अपनी आजादी पाने के एक साधन के तौर पर।
ये तो बहुत कठोर है।
हाँ, और वो साफ कहती है कि उसे चार्ल्स की जरूरत नहीं है, वो अपनी आजाद जिंदगी जीना चाहती है।
तो इस अंत में चार्ल्स का क्या होता है?
वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। कोई आसान जवाब नहीं, कोई रोमांटिक सुलह नहीं, वो बस उस अथाह खारे पराए समुद्र के सामने खड़ा है।
वो समुंदर शायद प्रतीक है उस विशाल, अनिश्चित लेकिन सच्ची आजादी का, जिसे अब उसे अपनाना होगा।
हाँ, ये अंत ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा बेचैन करने वाला है, लेकिन शायद चार्ल्स के सफर का ज्यादा लॉजिकल नतीजा है।
ये जो कई अंत देने का तरीका है फाउल्स का, ये पाठक को भी सोचने पर मजबूर करता है ना?
बिल्कुल, वो ये कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा एक सीधी सादी हैप्पी एंडिंग नहीं होती, चुनाव मुश्किल होते हैं, नतीजे अनिश्चित।
और ये उपन्यास के उस मूल विचार से जुड़ता है, अस्तित्ववाद, कि हमें अपनी जिंदगी के मायने, अपने रास्ते खुद चुनने होते हैं, और ये आसान नहीं होता।
हाँ, और फाउल्स पाठक को भी जैसे चुनने के लिए छोड़ देते हैं कि आपके लिए कौन सा अंत ज्यादा सही है। ये दिखाता है कि कहानी का अर्थ सिर्फ लेखक तय नहीं करता, पाठक भी उसमें भागीदार होता है।
आखिरी वाला अंत भले ही उदास लगे, पर वो व्यक्तिगत चुनाव की अहमियत और आधुनिक इंसान की पहचान के उस दर्द भरे जन्म को दिखाता है।
तो अगर हम इस उपन्यास के जो मुख्य विषय हैं या संदेश हैं उन्हें समेटने की कोशिश करें तो सबसे अहम क्या लगता है?
मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सवाल तो वही है, आज़ादी बनाम नियति का। क्या हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम हैं या अपनी राहत चुन सकते हैं? चार्ल्स का पूरा सफर यही संघर्ष है, और सारा तो जैसे इसी चुनाव की आज़ादी का प्रतीक है।
हाँ, और उपन्यास ये भी दिखाता है कि सच्ची आज़ादी के लिए हिम्मत चाहिए, त्याग करना पड़ता है, अनिश्चितता को गले लगाना पड़ता है।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा पहलू है विक्टोरियन समाज की आलोचना। फाउल्स उस युग के पाखंड को, खासकर नैतिकता, क्लास और जेंडर के मामलों में खुलकर दिखाते हैं। वो सख्त नियम, दबी हुई इच्छाएं, मर्दों का दबदबा, इन सब पर सवाल उठाते हैं।
और हाँ, नारीवाद या स्त्री स्वायत्तता का सवाल तो एकदम केंद्र में है, खासकर सारा के किरदार के जरिए।
सही, वो अपने फैसले खुद लेने के लिए लड़ती है, और अर्नेस्टीना के साथ उसकी तुलना ये दिखाती है कि उस दौर में महिलाओं के पास कितने कम विकल्प थे।
आखिर में उसका चार्ल्स को मना कर देना, वो उसकी आजादी का ऐलान है। वो किसी और की कहानी का हिस्सा नहीं बनना चाहती, अपनी कहानी लिखना चाहती है।
इसके अलावा फॉल्स हमें कहानी कहने की प्रकृति पर भी सोचने को मजबूर करते हैं।
हाँ, वो मेटाफिक्शन वाला पहलू, लेखक का बीच में आना, पाठक से बात करना, कई अंत देना, ये सब हमें याद दिलाता है कि हम एक कहानी पढ़ रहे हैं। और सवाल उठता है कि कहानियां बनती कैसे हैं, उनमें सच क्या होता है।
और विज्ञान और इतिहास का जिक्र भी अहम है। डार्विन का सिद्धांत उस वक्त नया था, जीवाश्मों का प्रतीकवाद, छुपा हुआ अतीत, बदलाव की ताकतें, ये सब कहानी में बुना हुआ है।
जैसे वो वैज्ञानिक क्रांति समाज और व्यक्ति के अंदर की क्रांति का आईना हो।
उपन्यास की शैली भी बहुत खास है। वो कथावाचक की आवाज, जो सब जानता भी है और अपनी सीमाएं भी दिखाता है, 20वीं सदी के नजरिए से 19वीं सदी को देखना।
हाँ, वो अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल सा बनाता है, और वो कई अंत वाली संरचना, वो खुद चुनाव और आज़ादी की थीम को मजबूत करती है।
और फाउल्स विक्टोरियन लेखकों की शैली की नकल भी करते हैं, जिसे पास्टीश कहते हैं,
लेकिन साथ ही उस पर टिप्पणी भी करते हैं, उसमें आज की सोच मिलाकर उसे तोड़ते भी हैं।
और प्रतीक तो हैं ही, कॉब सभ्यता और जंगलीपन की सीमा, जीवाश्म अतीत, बदलाव, अंडरक्लिफ, आज़ादी, खतरा, नियम तोड़ना, ये सब कहानी को और गहरा बनाते हैं।
सारा का एक छोटा सा वाक्य है जो मुझे हमेशा याद रहता है, जब वो खुद से कहती है, मैं वो नहीं हूं जो मैं हूं।
अरे हाँ, ये शेक्सपियर के ओथेलो से है ना, यागो का डायलॉग।
हाँ, और ये यहां सारा के लिए कितना सटीक बैठता है। ये समाज के उस लेबल के खिलाफ उसका एक तरह का विद्रोह है जो उसे फ्रेंच लेफ्टिनेंट की रखेल कहता है।
ये दिखाता है कि वो जानती है कि उसकी बाहरी पहचान सिर्फ एक मुखौटा है, एक रोल जो वो निभा रही है।
बिल्कुल, उसका असली स्वयं तो छुपा हुआ है, जिसे सिर्फ वो जानती है और कंट्रोल करती है। ये उसकी अपनी पहचान की लड़ाई का निचोड़ है।
ये उपन्यास पाठक को एक अजीब सी बेचैनी में छोड़ता है, मतलब इसका असर बहुत मिला जुला सा है।
हाँ, एक तरफ तो ये एक बड़ी रोमांटिक कहानी लगती है, चार्ल्स का जुनून, उसका दर्द हम महसूस करते हैं।
सही कहा, लेकिन दूसरी तरफ वो कथावाचक की ठंडी एनालिटिकल टिप्पणियां हैं, वो हमें कहानी में पूरी तरह डूबने से रोकती रहती हैं। ये जो खींचतान है, ये पढ़ने का अनुभव बहुत अनूठा बनाती है।
और जो स्थायी छाप रह जाती है, वो शायद इसकी गहरी अस्पष्टता है। ये प्यार, नैतिकता, खुशी, इन पर कोई आसान जवाब नहीं देता।
हाँ, वही सवाल रह जाते हैं, क्या सारा एक हीरो है या एक मैनिपुलेटर? क्या चार्ल्स की आखिरी में मिली अकेली आज़ादी जीत है या हार?
और फाउल्स इन सवालों को खुला छोड़ देते हैं, शायद यही कहने के लिए कि जिंदगी का मोल जवाब पाने में नहीं, बल्कि सवाल पूछने और चुनाव करने में है।
ये हमें उन कहानियों पर सोचने को मजबूर करता है जो हम अपने जीवन के बारे में खुद को सुनाते हैं।
और ये इतिहास को देखने का नज़रिया भी बदलता है। इतिहास कोई ठहरी हुई चीज़ नहीं, बल्कि अर्थ और आज़ादी के लिए लगातार चलने वाले संघर्ष का मैदान है, और वो संघर्ष आज भी जारी है।
तो अंत में द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमन हमें शायद यही याद दिलाता है कि एक प्रामाणिक, एक सच्ची जिंदगी जीने के लिए हिम्मत चाहिए और अनिश्चितता को स्वीकारने का हौसला भी।
और ये सामाजिक उम्मीदों और व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता के बीच जो हमेशा एक तनाव बना रहता है, उसे बड़ी खूबसूरती से दिखाता है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।